मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 8 जुलाई 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल मैंने अवसर के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ बातें की थी और मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि ईमेल के जरिए आप में से बहुतों ने इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए कहा है और अपनी ओर से कुछ प्रश्न भी पूछे हैं। आपकी इन जिज्ञासाओं का सम्मान करते हुए मैं अब उन्हीं के उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। सच पूछे तो एक जो प्रश्न पूछा गया है, जो कई श्रोताओं के द्वारा पूछा गया है और बहुत जायज भी है, सही है, वह यह था कि सर, हम अवसर को पहचाने कैसे? हमारे सामने हर समय, अगर आप कह रहे हैं कि अवसर होते हैं घटनाओं के रूप में भी, वाक्यों के रूप में भी, व्यक्ति के रूप में भी, समय के रूप में भी, स्थितियों के रूप में भी, अगर इतने रूप में अवसर है तो फिर हम उसे पहचानेंगे कैसे कि ये वाकई में अवसर है या नहीं है? है तो कितना मजबूत है, कितना बेहतर है, छोटा अवसर है, बड़ा अवसर है? मुझे उम्मीद थी कि इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाएंगे और सच पूछे तो पूछे भी जाने चाहिए, क्योंकि जब तक सुनी हुई बातों के प्रति आपके मन में जिज्ञासा का भाव पैदा नहीं होगा कि और आगे, तब तक बात बनती नहीं है। जैसे आप कभी कहानियों को याद कीजिए कि बचपन में जो आप कहानियां सुनते थे, लोग सुनाया करते थे, तो कैसे जैसे जैसे कहानियां आगे बढ़ती थी आपके मन में और जिज्ञासा का भाव होता था। अच्छा, और क्या आगे क्या हुआ, लगता था कि कोई जल्दी से जल्दी बता दे, तब जाकर के अंत तक पहुंचते पहुंचते मन भरता था और कहानी पूरी होती थी। सच पूछिए तो हम जिन विषयों पर बात करते हैं वे कहानी तो नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि बौद्धिक स्तर पर जब हम चूंकि बात कर रहे हैं तो इस तरह की जिज्ञासा श्रोताओं के मन में होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आइए मैं इस पर अब थोड़ी सी अपनी बात रखूं। बचपन में मुझे वो दोहा तो पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन नीचे की लाइन मुझे अभी तक याद है जो बहुत लंबे समय तक मेरे दिल और दिमाग में गूंजती रही है। मैं दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, दिल और दिमाग दोनों में गूंजती रही है। और दोस्तों, वह पंक्ति थी, न जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। हो सकता है कि किसी फिल्मी गीत की भी पंक्ति हो, न जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। बहुत बचपन में मैंने ये पंक्ति सुन ली थी और इस पंक्ति ने सच पूछिए तो मेरी चेतना पर इतना जबरदस्त प्रभाव डाला कि बाहरी स्थितियों को देखने का मेरा नजरिया ही बिल्कुल बदल गया। क्योंकि मुझे ये लगने लगा कि पता नहीं जो भगवान है वो किसके वेश में आ जाए, साधु के वेश में आ जाए, भिखमंगे के वेश में आ जाए, भूखे व्यक्ति के वेश में आ जाए, बच्चे के वेश में आ जाए, पता नहीं वो किस वेश में आ जाए, कुछ भी वेश धारण करके वो आ सकते हैं, तो फिर आप कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन है? तो सीधी सी बात है कि इसका एक ही उपाय है कि आप हर में उस संभावनाओं को देखें। अगर कोई भूखा व्यक्ति है तो लगे कि हो सकता है कि इसमें ईश्वर आया हो, इसके माध्यम से ईश्वर आया हो। कोई प्यासा व्यक्ति है तो इसके माध्यम से ईश्वर आया हो। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप हर में ईश्वर की संभावना को देखने लगते हैं तो सीधी सी बात है कि आपका व्यवहार हर के प्रति बदल जाता है। और वो व्यवहार कैसा होगा? व्यवहार बहुत विनम्र होगा, व्यवहार बहुत सहयोग का होगा, व्यवहार बहुत सद्भावपूर्ण का होगा, व्यवहार आप यूं कह लीजिए इस तरह का होगा कि अगर उसे जरूरत है तो हम उसकी मदद करें। दोस्तों, जब मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो इसने फिर और अपना भी विस्तार किया। अभी तक यह था कि न जाने किस वेश में बाबा। वेश में बाबा, इसका मतलब है कि उस समय तक मेरी चेतना में एक व्यक्ति मौजूद था, क्योंकि वेश शब्द था ना, तो वेशभूषा तो एक व्यक्ति का ही हो सकता है। तो उस समय तक जो भगवान की जो संभावनाएं मैं देखता था वो व्यक्ति में देखता था। लेकिन जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ और ये बात पता चली कि कण कण में भगवान हैं, तो फिर वो वेश ने अपना दायरा बहुत फैला लिया, बहुत व्यापक बना लिया। और जब कण कण में भगवान है कि व्याख्या मेरा दिमाग करने लगा, तो फिर वही स्थिति आई कि वो किसी घटना में भी हो सकता है, वह किसी कहानी में भी हो सकता है, किसी किताब में भी हो सकता है, किसी वाक्य में भी हो सकता है, कुछ में भी हो सकता है। इसका मतलब है कि जाकर के ये बात पूरी हो गई मेरे दिमाग की कि ईश्वर सर्वव्यापी है। फ्रेंड्स, आप लोगों को लग रहा होगा कि बात तो की जानी थी सुअवसर के ऊपर, अपॉर्चुनिटी के ऊपर, और ये ईश्वर की बात कहां से आ गई? अच्छा आप ये बताइए कि क्या जो ईश्वर है वो स्वयं किसी वेश के रूप में उपस्थित होकर के हमें कोई आदेश देता है या हमारा मार्गदर्शन करता है या हमारी मदद करता है? क्या किसी ने ऐसा अनुभव किया है, किसी ने ऐसा देखा है, कोई दावे के साथ ये बात कह सकता है? ईश्वर कैसे मदद कर सकता है, कैसे मदद करता है? सीधी सी बात है कि वह किसी न किसी को माध्यम बनाता है, और जो माध्यम है सच पूछिए तो उसे ही अप्रत्यक्ष रूप से यहां अवसर कहा जा रहा है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ईश्वर बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूं अपॉर्चुनिटी के रूप में ही हमारे सामने आता है और वो निरंतर आता रहता है। तो दोस्तों अब आप देखिए कि हम कहां पहुंचे, हम यहां पहुंच गए हैं कि जो भी बाहरी जगत है, जो भौतिक जगत है, उसके प्रति आपकी दृष्टि बदल गई है। और दृष्टि बदल करके क्या हो गई है कि हर जगह ईश्वर मौजूद है, यानी कि हरेक में संभावनाएं मौजूद हैं। ईश्वर संभावनाओं का ही नाम है, अनंत संभावनाओं का। अगर हम कहते हैं कि सर्वव्यापी है, इसके साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं सर्वशक्तिमान है। वो अगर इतना शक्तिमान है तो सीधी सी बात है कि उसकी संभावनाएं भी सीमित तो नहीं होंगी। तो सीधी सी बात है कि वो सर्व संभावना युक्त बहुत ही शक्तिशाली, या आप यह कह लीजिए कि इस विश्व का नियंता है और जो कण कण में फैला हुआ है। अब मैं आता हूं कि हम इसे पहचानेंगे कैसे। देखिए मित्रों, जब हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, सुअवसर की बात करते हैं, सुअवसर को पहचानने की बात करते हैं, उसका कोई रंग रूप नहीं होता। अगर हम सोचें कि वो किसी वेश में आएगा, कहता हुआ आएगा, डंका पीट करके आएगा, आने के बाद हमें बताएगा कि मैं तुम्हारे लिए सुअवसर बना करके भेजा गया हूं, तो ये बेकार की बात है। ये एक काल्पनिक कथा भले ही हो सकती है, लेकिन ये यथार्थवादी कथा तो नहीं है। वो आएगा, आता ही रहता है। अगर अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं तो हो सकता है कि यह एक ऐसा अवसर हो कि बात सुनने के बाद कोई बात आपको इतनी गहरी तरीके से लग जाए, गहरे तरीके से प्रभावित कर जाए कि यही सुअवसर बन जाए। हु नोज, नोबडी नोज, कोई भी नहीं जानता। यहां हमें जो सबसे बड़ी बात जो समझनी होगी, जो स्वीकार करनी होगी, वो यह कि जो सुअवसर है दोस्तों, वो आता नहीं है, वह होता नहीं है। आता नहीं है से ज्यादा अच्छा शब्द होगा होता नहीं है, वह होता नहीं है। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, भ्रम में पड़ गए होंगे कि ये क्या बात हुई। एक तो सर कह रहे हैं कि वो हर क्षण मौजूद है, अनेक अनेक रूपों में मौजूद है, चारों तरफ मौजूद है, फिर कह रहे हैं कि वो होता नहीं है। कंट्राडिक्शन हो गया ना, यहां आपको एकदम स्पष्ट विरोध दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों क्या किया जाए, जिंदगी है ही कुछ ऐसी, क्योंकि उसमें ठोस रूप में तो कुछ होता नहीं है, तो आपको अनुमान लगाना पड़ता है और अनुमान लगाते लगाते आप विरोधाभास के जंजाल में उलझ जाते हैं। दोस्तों यहां मैंने कहा कि वह होता नहीं है, तो फिर क्या है? क्या होता ही नहीं है? मान ले कि उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। नहीं, एग्जिस्टेंस है। अगर एग्जिस्टेंस नहीं होता तो हम इस पर बात ही क्यों कर रहे होते। तो दोस्तों आज के मैं अपने इस एपिसोड को इस वाक्य के साथ समाप्त कर रहा हूं कि वह होता नहीं है उसे करना पड़ता है, वह होता नहीं है उसे पाना पड़ता है। कल मैं अब इसी की व्याख्या करूंगा। तो आज अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।